जय राधा माधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन जगन्नाथ मिश्र उत्सव पर मुंबई में 15 मार्च 2006 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज जैसे आप जानते हो, आज क्या हम बुलाते हैं, जगन्नाथ मिश्रा का उत्सव। जगन्नाथ मिश्र कौन थे, चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? कल आपने चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव तिथि मनाया, और आज है जगन्नाथ मिश्र का उत्सव। जगन्नाथ मिश्र जो थे ब्राह्मण थे, और ज्यादा धनी नहीं थे। प्रभुपाद जी ने आज के दिन 1969 में हवाई में लेक्चर दिया था, और प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में कहा कि जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण होते हुए ज्यादा धनी नहीं थे। ब्राह्मण जो हैं वो ज्यादा धन के पीछे नहीं भागते। जो ब्राह्मण हैं उनकी रुचि रहती है आध्यात्मिकता में। तो जगन्नाथ मिश्रा इतने खुश हुए थे जबकि निमाई ने जन्म लिया या अपने आप को प्रकट किया, कि उनकी खुशी में, उनके प्रकट होने की खुशी में उन्होंने एक बहुत बड़े भंडारे का प्रबंध किया, जिसमें कि हजारों लोगों को उन्होंने प्रसाद खिलाया। और प्रभुपाद जी कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने जो शिक्षा हमें दी है वो सुपर फिलॉसफी है। प्रभुपाद जी के एग्जैक्ट शब्द मैं उपयोग कर रहा हूँ। फिलॉसफी है मतलब है सिद्धांत। अभी आप सब इस सभा में यहाँ के युवक हो, तो चैतन्य महाप्रभु जी की जो सुपर फिलॉसफी है उसका ज्ञान आपको अच्छी तरह होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने ये सिद्धांत रूपा और सनातन गोस्वामी को समझाया था, जिसके विषय में आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हो मध्य लीला के भाग्य में। चैतन्य चरितमृत को तीन भागों में बांटा हुआ है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। तो रूप और सनातन दो बहुत ही प्रिय प्रसिद्ध भक्त हैं। वैसे तो छह गोस्वामी हैं और हम भक्तों को रूपनुगज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम रूप गोस्वामी जी के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। रूप और सनातन नवाब हुसैन शाह के राज्य का शासन कर रहे। नवाब हुसैन शाह 500 साल पूर्व बंगाल का राजा बन गया था चापलूसी करके, और प्रजा थी लगभग हिंदू। उन दिनों में मुसलमानों की संख्या मुश्किल से 1% भी नहीं थी। तो राजा होशियार था, उसकी इच्छा थी कि शासन करने के लिए कोई ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए जिसका पूरा समाज इज्जत करता है। और पूछताछ करने के पश्चात उन्हें यह पता लगा कि दो भाई जो हैं इनकी समाज में बहुत इज्जत है, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। खैर, रूप गोस्वामी पहले उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी त्याग दी, और जब उन्होंने सरकारी नौकरी त्यागी उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ, अंदाजा लगाओ। पर जब भी उन्होंने आदि संपत्ति बांटी ब्राह्मणों को, जो शुद्ध ब्राह्मण हैं वो उतना ही स्वीकार करते हैं जितना कि आवश्यक हो, और 25% उन्होंने बांटा रिश्तेदारों को और 25% उन्होंने रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी से रूप गोस्वामी जी मिले थे प्रयाग में, जिसको आज आप अलाहाबाद के नाम से जानते हो, और प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु जी ने 7 दिन के लिए दिन रात भक्ति संबंधित शिक्षा दी रूप गोस्वामी को। फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम वृंदावन में जाकर उन स्थानों को खोजो जहाँ की भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी। आज जब आप वृंदावन जाते हो, ब्रज में जाते हो, बड़े आसानी के साथ आप अलग अलग स्थानों में जाते हो, आप जानते हो इस स्थान में ये लीला बीती, ये स्थान में ये लीला बीती, है ना। पर वो हमें ये शिक्षा किसने दी? सबसे पहले रूप गोस्वामी जी ने और महाप्रभु। जैसे कि जब आप लोग नवद्वीप परिक्रमा में जाते हो तो आपको पता, जैसे मैं पिछले हफ्ते नवद्वीप परिक्रमा में था, तो नवद्वीप परिक्रमा के दौरान आप अलग अलग स्थानों में जाते हो जहाँ की महाप्रभु जी ने अपनी लीला प्रकट की थी, तो आप कहते हो यहाँ ये लीला बीती थी, यहाँ ये लीला बीती थी। कैसे जानते हो? क्योंकि ठाकुर भक्ति विनोद रिटायरमेंट के बाद वो इन सब स्थानों में, पूरे नवद्वीप स्थानों में यात्रा की उन्होंने, और उन्होंने वो स्थान ढूंढे जहाँ की भगवान ने, जहाँ चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों ने अपनी अलग अलग लीला प्रकट की थी। तो रूप गोस्वामी जी को उन्होंने शिक्षा दी और बाद में ये शिक्षा सनातन गोस्वामी को भी दी। सनातन गोस्वामी की इच्छा नहीं थी कि वो सरकारी नौकरी में रहें, तो 1 महीने के लिए सनातन गोस्वामी दफ्तर नहीं गए। उन्होंने सूचना भेज दी कि मैं बीमार हूं। राजा निर्भर था इन दो भाइयों के शासन के ऊपर। तो जब राजा ने देखा कि रूपा गोस्वामी ने छोड़ दी नौकरी, तो बहुत ही क्रोधित हो गए थे। फिर सनातन गोस्वामी बीमार थे, तो राजा ने कहा कि इसका इलाज जल्दी होना चाहिए। तो उन्होंने अपने डॉक्टर को भेजा सनातन गोस्वामी की बीमारी को देखने के लिए। डॉक्टर जब अंदर आया सनातन गोस्वामी के घर, तो उन्होंने देखा ये तो बिल्कुल ठीक है। सनातन गोस्वामी और 30 पंडितों के साथ बैठे थे और पूरा कमरा भरा हुआ था ग्रंथों के साथ, और ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। जब राजा के डॉक्टर ने यह सूचना भेजी राजा को कि आपके प्रधानमंत्री का तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, वो तो आपको झूठी सूचना दे रहे हैं, तो राजा ने कहा कि आओ लौटो वापस नौकरी पर। सनातन ने कहा कि अब मेरी कोई रुचि नहीं है। तो फिर राजा ने सनातन गोस्वामी को जेल में भिजवा दिया था। जब सनातन जेल में थे, उनके जेल कीपर थे एक मुसलमान, तो सनातन ने वो जेल कीपर से कहा, भाई लो थोड़ी रकम, राजा को कह देना कि मैं पेट साफ करने सुबह गया था और मैंने नदी में छलांग मार दी। जेल कीपर ने कहा, अरे भाई तुम साधारण कैदी तो नहीं हो, और राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर तुम यहां से छुट गए। तो इतनी देर में सनातन गोस्वामी को एक पत्र पहुंचा जिसमें उनके भाई ने सूचना भेजी कि मैंने इतना पैसा तुम्हारे लिए रखा है इस बनिए की दुकान में। उन दिनों में बैंक नहीं थे, लोग पैसा रखते थे बनिए के पास। तो वो पैसा लेकर सनातन गोस्वामी ने फिर से वो जेल कीपर को लालच दिया, कहा ये ज्यादा रकम ले लो, कह देना राजा को कि मैं बस भाग डूब गया। अंत में जेल कीपर ने उन्हें छोड़ दिया पैसे लेकर। और फिर सनातन एक शिष्य के साथ, एक सहयोगी के साथ जिनका नाम था ईशान, वो महाप्रभु जी को मिलने के लिए बनारस की ओर चले। तो रास्ते में एक अतिथि घर में वो रुके। अतिथि घर का जो मालिक था वो बहुत होशियार था, उसने अपने रिसेप्शन में एक जोशी को रखा हुआ था। तो जब कोई अतिथि आता था अतिथि घर में रहने के लिए, तो पहले वो देख लेते थे, वो देख लेता था ये कितना धनी व्यक्ति है, और अगर धनी होता तो उसको रात को लूट लेते थे। तो जो सनातन के साथ जो उनके सेवक थे उनके पास 8 सोने के सिक्के थे। तो जोशी ने कह दिया अतिथि घर के मालिक को, ये बड़ा धनी यात्री है, इसकी खास खातर करना। तो अतिथि घर का मालिक सनातन गोस्वामी की खास खातर कर रहा था, बड़ी खुशामद, आगे पीछे नाचना, क्या चाहिए आपको बोलो बोलो बोलो। अगर कोई आपकी ज्यादा खुशामद करे तो आपको शक हो जाता है ना, कुछ चाहिए होगा इसको। तो सनातन ने अपने ईशान सहयोगी से पूछा, क्योंकि सनातन राजनीतिक कार्य में बड़े होशियार थे, पूरा शासन कर रहे थे विश्व के सबसे धनी राज्य का। बंगाल विश्व का सबसे धनी राज्य था 500 साल पूर्व। तो उन्होंने पूछा ईशान से, ईशान तुमको साथ में कुछ उठा रहे तो नहीं हो धन? तो ईशान ने कहा मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं, थे 8, पर एक बार फिर से झूठ बोल दिया। पहले झूठ बोला, कुछ बोला ही नहीं, और 8 सिक्के चुपचाप ले आए। फिर जब सनातन को बोला कितने सिक्के हैं तो 8 की बजाय 7 कह बोल दिया। तो सनातन ने वो कहा 2 वो 7 सिक्के। तो सनातन गोस्वामी वो 7 सोने के सिक्कों को लेकर अतिथि घर के मालिक के पास गए और कहा लीजिए ये संपत्ति आपके लिए है। तो अतिथि घर के मालिक ने कहा आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, मैं आज रात को आपको मारने वाला था, क्योंकि मुझे सूचना मिली थी कि आपके पास 8 सोने के सिक्के थे, पर आप क्योंकि खुद ले आए हो अभी मैं आपसे ये नहीं लूंगा। तो सनातन ने कहा आप नहीं लोगे तो कोई और मुझे मार के ले लेगा, तो इसे अच्छा आप ही ले लो। फिर सनातन ने कहा कि मैं राजा से छुप छुप कर जा रहा हूं और मेरा उद्देश्य है वाराणसी पहुंचने के लिए, तो आप मेरा सहयोग दे सकते हो। और सनातन ने ईशान को वापस घर भेज दिया। तो सनातन जब पहुंचे थे वाराणसी तो रास्ते में रुके उनके बनोई श्रीकांत के घर। श्रीकांत एक राजा के शासन कर रहा था और 3 लाख सोने के सिक्के लेकर वो आया था घोड़ों को खरीदने के लिए। तो श्रीकांत ने देखा कि सनातन दाढ़ी वाड़ी उगाकर छुप छुप कर भाग रहे हैं। तो ईशा ने कहा श्रीकांत ने, अरे भाई क्या ये कर रहे हो, आओ रहो मेरे साथ। सनातन ने तो सब सुख इत्यादि सब त्याग दिया था। तो सनातन ने कुछ स्वीकार नहीं की सुविधा, पर श्रीकांत ने एक बहुत महंगी चादर सनातन को दे दिया ओढ़ने के लिए। और सनातन गोस्वामी फिर पहुंचे वाराणसी में, जहाँ की चैतन्य महाप्रभु विराजमान थे चंद्रशेखर आचार्य के घर में। सनातन पहुंचे, घर के बाहर खड़े थे, महाप्रभु जी अंतर्यामी हैं, उन्हें पता था सनातन पहुंच गए हैं। तो उन्होंने चंद्रशेखर आचार्य को कहा, बाहर जाओ घर के, एक बहुत प्रसिद्ध संत वहां पहुंचा है। तो चंद्रशेखर आचार्य आए बरामदे में, देखने लगे कोई संत महात्मा खड़ा है। उन्होंने देखा एक आदमी दाढ़ी के साथ खड़ा है, तो उन्होंने सोचा ये कोई मुसलमान मुल्ला है। तो उन्होंने लौट कर कह दिया, मुझे तो बाहर कोई संत नहीं दिखता। महाप्रभु ने कहा फिर से जाइए, फिर से गए, फिर से लौट गए, कहा कि वहां तो एक मुल्ला दिखा है बाहर दाढ़ी वाला, कोई संत तो नहीं दिख रहा मुझे। तो महाप्रभु ने कहा उस मुल्ले को अंदर बुलाओ। और जैसे ही सनातन गोस्वामी अंदर आए, महाप्रभु जी उन्हें गले मिले। जब महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को गले मिले, तो चंद्रशेखर आचार्य ये देखकर आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा ये कोई खास भक्त होगा कि महाप्रभु जी इतने प्रेम से उसे मिल रहे हैं। पर सनातन ने देखा कि महाप्रभु जी उसकी महंगी चादर शॉल जो पहनी हुई है उसको घूर कर देख रहे हैं। तो सनातन समझ गए कि महाप्रभु जी उसकी महंगी चादर से संतुष्ट नहीं है। तो फिर सनातन गोस्वामी गए गंगा के तट पर, वहां एक बूढ़ा यात्री था, उसे कहा आप मुझे अपनी फटी हुई चादर दे दो, मैं उसके बदले में आपके महंगी चादर देता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे भाई तुम्हें हम अखौल कर रहे हो क्या, तुम्हारी इतनी महंगी चादर है तुम्हें फटी हुई चादर के बदले में दोगे। खैर सनातन ने कहा नहीं मैं अखौल नहीं कर रहा। तो सनातन गोस्वामी आए महाप्रभु जी के सामने फटी हुई चादर को ओढ़कर। तो महाप्रभु जी देखकर बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने कहा कि एक अच्छा डॉक्टर किसी मरीज का अगर इलाज कर रहा है जो जो बीमारी का कारण है उसे रहने थोड़ी देता है। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका इलाज करता है तो ये थोड़ी छोड़ देता है कि वो बीमारी फिर से हो जाए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने उपदेश दिया है कि जो त्यागी हैं सन्यासी हैं उन्हें सादे सादे वस्त्र पहनने चाहिए और सादा जीवन बिताना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी फिर महाप्रभु जी के साथ थे और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है सनातन गोस्वामी को, जिसे आप मध्य लीला में प्राप्त करते हो 22वें अध्याय में। सबसे पहले तो महाप्रभु ने कहा जिवेरे स्वरूप आए कृष्णा नित्य दास, कि हम सबका स्वाभाविक रूप क्या है कि हम हैं भगवान के सेवक। आगे उन्होंने कहा ब्रह्मांड ब्रह्मीत कोनो भगवानो जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी, कि हम सब अनेक योनियों में भटक रहे हैं पर वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिससे भक्ति का बीज मिलता है। जैसे कि आप सब जो यहाँ हो आप सब अनेक योनियों में गुजरते आए हो, जल की योनि, पक्षी की योनि, पशु की, कीड़े की, सब योनि में गुजरने के पश्चात ये मानव योनि प्राप्त होती है। और इसका सदुपयोग क्या है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात ये भक्ति का बीज प्राप्त होता है। तो भक्ति का बीज तो प्राप्त हो गया, उसका क्या अर्थ? उसका अर्थ है कि आपको भक्ति के महत्व के विषय में ज्ञान मिले। ये ज्ञान आपको मिल सकता है ग्रंथ के द्वारा, ये ज्ञान आपको मिल सकता है किसी भक्त के द्वारा। तो इस ज्ञान का उपयोग आप कैसे करोगे? भक्ति संबंधित ज्ञान मिलता है, संक्षेप में क्या है वो ज्ञान? हाँ, श्रवणम कीर्तनम। जैसे कि साधारण स्थिति में बीज उगेगा, अगर आप बीज को पानी पिलाओगे तो उसी प्रकार ये जो भक्ति का बीज है ये उगेगा कब? अगर आप इसे पानी पिलाओगे। और पानी का माध्यम क्या है? श्रवणम कीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे इस कलियुग के धर्म के शिक्षा देने के लिए। और कलियुग में भागवत प्राप्ति का साधन क्या है? भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज ने पूछा, ये बताइए किस प्रकार कलियुग में लोगों का उद्धार होगा? और सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कलियुग में दोष ही दोष है, एक गुण है। क्या है वो एक गुण? कृष्णा का कीर्तन। इसी प्रकार भागवत में एक और श्लोक है, कृतय अध्याय तो विष्णु, कि इस कलियुग में हरि नाम के उच्चारण से वही लाभ प्राप्त हो सकता है जो कि सतयुग में प्राप्त होता था भगवान का चिंतन करके, त्रेता युग में प्राप्त होता था यज्ञ के द्वारा, द्वापर युग में प्राप्त होता था भगवान के मंदिरों में भेंट अर्पण करके। वही लाभ प्राप्त हो सकता है कलियुग में कैसे? हरि नाम के जप के द्वारा। जैसे हमने कल कहा था आपको, चैतन्य महाप्रभु जी रोना बंद करते थे कब? कब? जब लोग हरि नाम सुनाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि जो भक्ति का बीज है ये उगेगा जब आप श्रवणम कीर्तनम करोगे। और जैसे आप सुनते हो, भगवान ने एक जीव दिए, दो कान दिए हैं, इनका आप उपयोग करो किस लिए? श्रवणम कीर्तनम। आगे उन्होंने कहा कि भक्ति का बीज उगने के लिए आपको एक दीवार बनानी पड़ेगी। जैसे कि आपके इस मकान में भी दीवार है, दीवार किस लिए? कि गलत व्यक्ति अंदर नहीं आ जाए। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि आपको भक्तों की संगत में रहना चाहिए। भक्तों की संगत में रहोगे तो अगर कोई टूटी भी है, कोई कमजोरी है, वो ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भक्तों की संगत में रहो। तो साधु संगत, मैं अभी बांद्रा में लेक्चर दे रहा था नारद मुनि जी के ऊपर। नारद मुनि ने कहा व्यासदेव को कि पूर्व जन्म में वो एक साधारण नौकरानी के पुत्र थे, पर वो नौकरानी की सेवा कहाँ थी? संतों के घर में। तो साधु संगत आवश्यक है। और आगे उन्होंने कहा कि कई बार भक्ति का बीज जब उग रहा है तो साथ में अनवांटेड वीड्स भी उगने लग जाते हैं। जैसे कि कई बार आप भक्ति के मार्ग में जुड़ते हो पर साथ में फिर आपके मन में घमंड आ जाता है कि मैं इतना बड़ा प्रचारक बन गया, इतना बड़ा भक्त बन गया। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि जब ये अनवांटेड वीड्स उगे तो हमें एकदम इन्हें काट देना चाहिए। और आगे उन्होंने कहा कि भक्ति के मार्ग में भक्ति का जो बगीचा है ये नष्ट हो सकता है कैसे? अगर एक पागल हाथी अंदर आ जाए। तो आप सबका सौभाग्य है कि आप छोटी आयु में ही भक्ति की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। खैर इतने छोटे तो अब नहीं हो। प्रहलाद महाराज ने कहा कि 5 साल की आयु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है बेटर लेट देन नेवर। 5 साल की आयु में तो आपने बस मिस कर दी, पर अब जो आपको मौका मिल रहा है इसका आप लाभ उठाओ। और कृष्णा भक्ति का जो ज्ञान है इसका हम सब बड़े आसानी के साथ लाभ उठा सकते हैं। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। हरे कृष्ण।